दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि अमेरिका में बसे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व काफी है और कथित रूप से इंडियन अमेरिकन लॉबी वहां पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की भी क्षमता रखती है। लेकिन इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय या भारतीय मूल के लोगों के प्रभाव के बारे में क्या कहा जा सकता है और आखिर ये लॉबिंग होती क्या है, इसी विषय में हमने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में फेलो और न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑकलैंड शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक शर्मा से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि लॉबिंग की प्रक्रिया बहुसांस्कृतिक देशों में समुदायों के लिए अपनी आवाज रखने का एक जरिया होता है।
लॉबिंग बहुत सारे कंट्रीज में ये काफी रेगुलेटेड है क्योंकि ये एक तरह से करप्शन को कर्ब करता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में लॉबिंग जो है पूरी तरह से एक अधिकार है क्योंकि वो कंट्री जो है काफी देश के लोगों जाकर के वहां बसे, तो एक प्रेशर ग्रुप फॉर्म करने का अधिकार होता है, एक राइट है कि आप अपने वॉइस को रखें गवर्नमेंट में और लेजिस्लेचर में। तो इस तरह से वो वहां से उसका जन्म होता है अमेरिका में, और के फर्स्ट 10 अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उससे वो, और स्पेशली सेकेंड अमेंडमेंट जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन देती है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अपना एक फॉर्म कर सकते हैं और अपने वॉइस को रख सकते हैं लेजिस्लेचर कांग्रेस एग्जीक्यूटिव में। तो अमेरिका में ये लेजिटिमाइज है और ये 1937 फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट से शुरू होता है और फिर वो 1946 में फिर एक लॉबिंग रेगुलेशन एक्ट आता है, फिर वो 1995 में उसको रेगुलेट किया जाता है और फिर वो 2007 में उसको फिर से रेगुलेट किया क्योंकि करप्शन नहीं हो। पहला तो ये लॉबिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे जगह में गलत तरीके से लिया जाता है, लेकिन अमेरिका और बहुत सारे विकसित देशों जैसे जापान वगैरह में भी ये काफी लेजिटिमाइज प्रोसेस है, काफी लीगल प्रोविजन के तहत किया जाता है। इसमें आप रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के साथ कि मैं भाई ये फलना विषय के लिए मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ, मैं अपने लॉबिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं पर्टिकुलर इतनी ग्रुप से हूँ लॉबिंग करूंगा। तो इस तरह का प्रोविजन काफी देश में है और अमेरिका में ये काफी अच्छी तरह से है। और जहां जो भी मल्टीकल्चरल कंट्री होता है उसमें इतनी ग्रुप्स चूंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आते हैं तो वो स्वाभाविक है कि इस तरह का रूल होगा।
वहीं डॉक्टर शर्मा ने हमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लॉबिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया।
मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होता है अमेरिका में, आप पहले उसको ट्राई करते हैं कन्विंस करने के लिए कि ये पर्टिकुलर बिल जाए कांग्रेस में, और उसके बाद से फिर आप एजुकेट करते हैं कांग्रेसमैन को कि भाई ऐसे ऐसे हमारे बात को रखिएगा और उनको आप इन्फॉर्मेशन दे, फाइट फॉर यू। जब आप वो पास हो जाता है तो फिर वो एग्जीक्यूटिव का साइन हो, वहां पर अगर नहीं कुछ गड़बड़ हो तो उसमें आप फिर एग्जीक्यूटिव के पास लॉबिंग करते हैं। अगर वहां पर मान लीजिए लगता है कि आपको ये कहीं जुडिशियल एक्ट में जुडिशरी इस पे एक्शन ले सकती है तो फिर आप वहां भी लॉबिंग करते हैं। तो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट है अमेरिका में और उसका सेपरेशन ऑफ पावर्स उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेरा मानना है कि ये आप रिप्रेजेंटेटिव को लॉबिंग करते हैं, जैसे आपके जैसे वेस्टर्न सिडनी हो गया, आउटर मेलबर्न हुआ, वहां इंडियंस काफी हैं, तो दे कैन इन्फ्लुएंस देयर रिप्रेजेंटेटिव देयर कि भाई आप जो है आप हमारी बात को रखें, हमारा ये मुद्दा है, हम इस पे चाहते हैं कि आप इसको रखें, नहीं तो हम आपको हरा भी सकते हैं, हम आपको ऐसा। तो एक ये एक ग्रास रूट लॉबिंग हुआ। दूसरा होता है आप गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होता है। आप एकेडमिक्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काफी एस्टैब्लिश इंडियंस एकेडमिक्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको मेलबर्न में है, कहीं हर जगह आपको कोई ना कोई ऐसा बहुत इन्फ्लुएंशियल एकेडमिक दिख जाएगा जिनकी वॉइस को तरजीह दी जाती है यहाँ पर। तो इस तरह का होता है। फिर आपको काफी डॉक्टर्स हैं जो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हैं, इंजीनियर्स हैं, तो सबका अपना अपना एक वॉइस होता है और वो अपने अपने लॉबी के थ्रू वो इन्फ्लुएंस करते हैं और एक एक माहौल बनता है और जिसमें कि पॉलिसी मेकर्स उसको पिक करते हैं कि भाई ये पॉलिसी बनाने के पहले हमें सोचना होगा। तो इस एथनिक ग्रुप का लॉबिंग का टेक्निक्स डिफरेंट, ग्रास रूट होता है, गवर्नमेंट होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं और खासकर यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। इवन मीडिया, इट्स नॉट लाइक अमेरिका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऑलरेडी इसमें यहाँ काफी नेशनलिटीज के लोग हैं तो ये इसका महत्व रहेगा क्योंकि जैसे जैसे लोग एशिया से, अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, यूरोपियंस तो आए ही थे, तो इस तरह से जैसे जैसे लोग आते रहेंगे तो ये सभी अपने अपने वॉइस के लिए एक ग्रुप बनाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में लॉबिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा और वो फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा नहीं होगा कि मतलब वो ज्यादा फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, उससे ज्यादा जो होगा आपको वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक सुपर पावर नहीं है। पहली बात याद रखा जाए कि अमेरिका एक सुपर पावर था जिसने आपका एक पॉलिसी जो है एक कंट्री को एड दिला सकता था, एक कंट्री को वॉर में अगर वो हेल्प कर सकता था तो एक कंट्री की विजय हो सकती थी। तो इस तरह का, तो ऑस्ट्रेलिया वैसा कोई पावर नहीं है, पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अमेरिका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहां पर काफी लोग आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी इनको है और इसमें यहाँ पर उनका एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि तो उनको ये जरूरत है कि वो अपने यहाँ पर रहने के लिए उनका उन पे कोई अटैक नहीं हो, कोई रेशियल अटैक नहीं हो, उनमें कोई उनके साथ कोई सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो इस तरह के लॉबिंग के लिए वो अपना अपना एक ग्रुप बनाएंगे।
यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के प्रोफेसर फजल रिजवी, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के फेलो भी हैं और पहले अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में भी रह चुके हैं, उन्होंने हमें अमेरिका में इंडियन अमेरिकन लॉबी के प्रभाव के बारे में बताया और इस बात पर भी गौर किया कि इंडियन ऑस्ट्रेलियंस का प्रभाव संभवतः उस स्तर पर क्यों नहीं है।
I lived in United States for 10 years and I observed this phenomenon very, very closely. And I've been thinking about it for at least 15 years as to why it is that the US lobby groups and US Indian American population is much more influential in public space, not only with the governments, but also with corporations and media and whole range of other spaces than Australians, you know, given that Australian proportion of Indian background people is in fact larger than it is the case in United States. So you're not looking at insignificant numbers, and it's growing very rapidly. So why is it that Americans are much more influential? I think there are a number of reasons. The reason that I think is most significant is that American institutions are much more welcoming of participation by people of other backgrounds than Australians are. And I can say a little bit more about that. But I think the other thing that is really important is the higher education system. Basically what is happening is many Indians go as highly qualified graduate students, some of the best students that India produces. They go to Ivy League schools, and from there they get picked up in very powerful organizations and are given opportunities to be successful. So, for example, you go from IIT Mumbai to MIT, and from there you get picked up by Google. And from Google you go on to become advisor to a government secretary or something like that, and move from there to. So basically the path from, if you like, India to America and powerful institutions is much more seamless than it is here.
डॉक्टर फजल रिजवी ने इस बात के संकेत दिए कि कथित रूप से इसका संबंध ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूशन से हो सकता है।
I mean, our population of Indian Australians is on average much better educated, much more skilled and much more prepared to participate in a whole range of ways. I think that has something to do with the Australian institutions, which haven't actually been as welcoming of participation, except in a very private sense. You know, so the public participation is relatively limited. And if you look at the ways in which people feel inclined to go into the public space, you know, that is not as clear-cut as it is in the United States. I mean, don't forget, until recently, we had 2 out of 50 governors who were of Indian backgrounds, Bobby Jindal and Nikki Haley. You know, I mean, that is long way away from what we can expect here in Australia.
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्रेसिडेंट बालेश सिंह धनकर कहते हैं कि हालांकि ऑस्ट्रेलिया में उस तरह की लॉबिंग नहीं होती जैसे कि अमेरिका में होती है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में बसा भारतीय मूल का समुदाय भारत और ऑस्ट्रेलिया के हित में लॉबिंग करता है।
देखिए, इसमें कई पहलू हैं। पहला तो जिस स्तर तक भारतीय समुदाय दूसरे देशों में, खासकर यूएस में लॉबिंग कर पाती है, उस स्तर तक तो अभी भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। उसके जाहिर से कारण है कि नया समुदाय है जो इमिग्रेशन हुआ है भारत से ऑस्ट्रेलिया, वो भी उतने पहले से नहीं है जितना यूएस में है। लेकिन यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय समुदाय भारत और ऑस्ट्रेलिया के हित में और भारत के हित में लॉबिंग करती है, और पिछले काफी समय से बहुत से विषयों पे वो सफल भी रही है। जैसा कि उदाहरण के लिए न्यूक्लियर का विषय जब चल रहा था, तो भारतीय समुदाय का भी उसमें एक लॉबिंग का जो था वो सकारात्मक असर देखने को आपको मिला था, और आखिरकार जो पॉजिटिव फैसला आया ऑस्ट्रेलियाई सरकार का भारत की तरफ, उसमें भारतीय समुदाय की लॉबिंग का काफी बड़ा हाथ था।
एक और बात जो जहन में आती है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे भारतीय समुदाय से जुड़े संगठन हैं, तो इसका भारतीय समुदाय द्वारा लॉबिंग पर क्या असर पड़ सकता है? सेवा इंटरनेशनल के समिति सदस्य और वकील आशुतोष अग्रवाल कहते हैं,
अगर हम सिडनी का एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर हमारे यहाँ
कम्युनिटी बेस्ड इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि इट इज अनबिलीवेबल। आप सोचेंगे कि इतनी छोटी कम्युनिटी है कंपैरेटिवली, फिर भी हम बहुत सारे हमारे अलग अलग एसोसिएशन हैं, तो अगर वो सब साथ मिलकर चलें तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी है, हम सब मिलकर जो कर सकते हैं, अगर हम सब साथ में रहें, हम सब मिलकर काम करें, तो वी कैन बी अ बेटर वॉइस डेफिनेटली।
लेकिन डॉक्टर फजल रिजवी कहते हैं कि अलग अलग भारतीय संगठनों का प्रचलन तो अमेरिका में भी है।
आई थिंक दैट प्रोबब्ली अप्लाइज टू यूनाइटेड स्टेट्स टू। द यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इज नॉट अ कोहेसिव एंटिटी आइदर। आई थिंक वी शुडन्ट अस्यूम दैट इन यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव कम टुगेदर। इट्स जस्ट दैट देयर आर एवेन्यूज एंड द पाथ्स टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स इज मच मोर एक्सटेंसिव इन यूनाइटेड स्टेट्स।
वहीं इसी विषय पर डॉक्टर अशोक शर्मा ने भी अपनी राय रखते हुए कहा,
इंडियंस जो अमेरिका में थे उनका कोहेशन बहुत टाइम के बाद फॉर्म हुआ, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है। वहां पर एक तमिल एसोसिएशन मिल जाएगा, एक बंगाली मिल जाएगा, पंजाबी मिल जाएगा, गुजराती मिल जाएगा, नॉर्थ इंडिया के हिंदी बेल्ट के लोग मिल जाएंगे, सबका एक अपना एसोसिएशन मिलेगा वहां पर, लेकिन वो फिर भी एक यूनाइटेड इंडियंस के रूप में काम करते हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी वो एक फीलिंग है, जब आप क्रिकेट मैच होता है तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो उसमें दिखता है। लेकिन हाँ, देयर इज अ, क्योंकि ये नए इमिग्रेंट्स हैं, इनका कोई अभी आपस में शेयर नहीं किए हैं कुछ ऐसा जैसे आप शेयर करते हैं स्ट्रगल वैसा करके, कुछ वैसा कुछ है नहीं, तो ये इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये एक फिर भी एक यूनिफाइंग फैक्टर तो है इंडिया के रूप से, वो तो है।
वहीं बालेश सिंह धनकर मानते हैं कि भले ही ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग संगठन हो, लेकिन जब भारतीय समुदाय के हित की बात आती है तो सभी साथ हैं।
भारतीय सोच में और भारतीय जीन में ये चीज है कि विविधता में एकता को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे भारत के बाहर हो। भारत में भी अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज, अलग अलग तरह की पहचाने हर समुदाय या हर क्षेत्र में होती हैं, चाहे वो भाषाओं से जुड़ी हों, चाहे वो क्षेत्रों से जुड़ी हों, चाहे वो और किसी भी तरीके की पहचाने, बहुत विविधताएं हैं भारत में भी। और भारतीय समुदाय जब बाहर आता है तो वो अपने साथ वो उन पहचानों को रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वही कारण है कितने सारे आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती है। लेकिन जब बात आती है एकजुटता की, जब बात आती है भारतीयता की, ये भारत के हित की और भारतीय समुदाय के हित की, तो सभी साथ हैं। ऐसा आपको बहुत उदाहरण देखने को मिलेंगे जब लोग अपने क्षेत्रीय भाषाई जो अंतरों को छोड़ के एकजुट होके साथ आए हैं, जैसा कि कुछ समय पहले जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया आए थे तो आपको इतना अच्छा उदाहरण देखने को मिला था कि सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी अलग अलग पहचान के लोग, भारतीय समुदाय के लोग एक साथ जुड़ के उन्होंने काम किया था, एक साथ जुड़ के उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया था। तो वो ये तो निचले सतह पे अलग अलग पहचानें होती हैं, लेकिन जब समय आता है तो सभी एक साथ जुड़ के काम करते हैं और इसी को विविधता में एकता बोलते हैं।
बालेश सिंह धनकर ये भी कहते हैं कि इस क्षेत्र में पिछले 10 सालों में काफी प्रगति हुई है।
देखिए, अगर मेरा पर्सनल आकलन अगर बात करें तो मैं संतोषजनक प्रभाव अभी बनाने में उतना सफल नहीं हुआ है भारतीय समुदाय जितना दूसरे देशों में है, अगर आप इस चीज को कंपेयर करें तो। लेकिन अपने आप में पिछले 10 सालों में जैसे भारतीय समुदाय एकदम से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया में, और जिस तरह से उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट एरिया में, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स पे, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक्स पे, तो वो जरूर ये बात सही है कि काफी अच्छी प्रगति की है। लेकिन जब हम दूसरे देशों से वहां पे जो भारतीय समुदाय का जो असर है अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो उतना भी संतोषजनक नहीं हुआ है, और इसीलिए संतोष करके बैठना भी नहीं चाहिए। भारतीय समुदाय को और एकजुट होकर और काम करना चाहिए समुदाय के लिए, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई रिश्तों को बढ़ाने के लिए और सुधारने के लिए, ताकि हम एक और सशक्त समाज के रूप में उभर सकें और सशक्त और सकारात्मक योगदान दे सकें भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई रिश्तों के लिए और भारत की लॉबिंग के लिए। तो आगे और बहुत काम करना बाकी है, लेकिन अभी जितना हुआ पिछले 10-15 साल में वो भी बहुत अच्छा हुआ।
वहीं आशुतोष अग्रवाल ने कहा कि भले ही भारतीय मूल का समुदाय आज उतना प्रभावी ना हो, लेकिन आने वाले समय में उसके प्रभाव के बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं।
ऑस्ट्रेलिया में जो माइग्रेशन पहले हुआ है 1970 से लेकर, वो पहले डॉक्टर्स या कुछ इंजीनियर्स का हुआ है, ये पिछले करीब 10 साल में ऐसा हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे और दूसरे प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं, स्किल्ड बेस्ड माइग्रेशन है, तो पिछले 10 साल से जो लॉबी ग्रुप्स हैं वो थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू हुए हैं। तो अभी तक हम ऐसा नहीं है हमारे साथ सिचुएशन की हम बहुत सारी सीट्स में कहीं वोट्स को स्वे कर सकें। अगर आप देखें तो शायद वेस्टर्न सिडनी की बात करें या आउटर मेलबर्न की बात करें तो शायद हमारे पास में वो वोटिंग पावर है। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से जो लॉबी ग्रुप्स हैं वो अब स्ट्रांग होना शुरू हुए हैं। तो आज की तारीख में आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग, पर आने वाले 5-10 सालों में डेफिनेटली। बिल्कुल आज की स्थिति में मुझे लगता है कि प्रभाव इतना नहीं है, आने वाले दिनों में बिल्कुल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।